जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी गोपीचन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीचन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना यमुना तीरावन चारे राधा माधव कुंज बिहारे गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Jaya Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Jaya Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Jaya Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram. Jai Jai Sita Ram, Jai Jai Sita Ram. Jai Jai Sita Ram, Jai Jai Sita Ram. Ram 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 Raja Ram. Ram 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 Sita Ram. Ram 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 Raja Ram. Ram 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 Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram. Jai Jai Sita Ram, Jai Jai Sita Ram. Jai Sita Ram, Jai Jai Sita Ram. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Shtotar Shat Shishya Madhabhai Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BVD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Shtotar Shat Shishya Madhabhai Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री राम को प्रणाम कर लेते हैं। कृपया आप सब दोहराइए, रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनके परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। कल कथा प्रारंभ हुई भगवान श्री राम की। चर्चा हम लोगों ने की कि कैसे भगवान अवतार लेते हैं, इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है वैकुंठ लोक, और जिसमें प्रमुख लोक है गोलोक वृंदावन, और उसके द्वार पर है अयोध्या, अर्थात अयोध्या से प्रवेश करके फिर गोलोक में प्रवेश होता है, और अयोध्या में वे सारे चरित्र जिनका वर्णन हम रामायण में सुनते हैं वे शाश्वत रूप से वहाँ पर निवास करते हैं और फिर भगवान अलग अलग समय पर अवतार लेते हैं। अवतारों के कारण भी हम लोग सुन रहे थे कल, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, इस जगत से पाप को कम करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो मैं प्रकट होता हूँ। वैसे प्रश्न ये आता है कि कब ऐसा समय रहा जब धर्म की हानि नहीं हुई है। आज भी तो धर्म की हानि हुई है, आज भी तो धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा, अधर्म बढ़ चुका है, तो फिर भगवान आज क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? भगवान आते हैं अलग अलग रूपों में, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान का अवतार हुआ है अपने नाम के रूप में। एक बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथ चैतन्य भागवत में कहा गया है कि भगवान कलयुग में कई रूपों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होते हैं, तुलसी के रूप में प्रकट होते हैं, गंगा के रूप में प्रकट होते हैं और भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान अपनी शक्ति, अपनी कृपा भक्तों के द्वारा, तुलसी के द्वारा, गंगा के द्वारा इस जगत में प्रकट करते हैं। तो फिर कल हम लोग सुन रहे थे पार्वती देवी के प्रश्न को जो उन्होंने शिव जी से किया कि क्या भगवान अज्ञान में हैं या ज्ञान में हैं? अगर ज्ञान में हैं तो कैसे नहीं जान पाए कि उनकी पत्नी कहाँ है, और अगर अज्ञान में है तो फिर कैसे उनको भगवान माना जाए? कोई व्यक्ति अज्ञान में होकर तो भगवान नहीं हो सकता। और पार्वती देवी ने कहा ये तो सत्य नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि आज वो अज्ञान में है आगे चलकर ज्ञान में हो जाएंगे। पार्वती देवी कहती हैं भगवान तो ऐसे नहीं हो सकते जो अपनी ही माया के अधीन हो जाएं, फिर वो भगवान कैसे? भगवान तो शक्तिमान है, भगवान तो स्वामी है, तो फिर स्वामी अपनी ही माया, अपनी ही शक्ति के अधीन कैसे हो सकता है? तो पार्वती देवी कहती हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आज वो अपनी माया के अधीन होकर भूल गए हैं, लेकिन आगे चलकर उनको याद आएगा तब वो भगवान हो जाएंगे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी माया के अधीन आ ही नहीं सकते। और यही प्रश्न तो था पार्वती का कि कैसे हो सकता है कि भगवान ही अपनी माया के अधीन आ जाए। और फिर शिव जी ने उत्तर दिया कि भगवान इनसे परे हैं, माया तो भगवान को छू भी नहीं सकती, माया प्रभावित नहीं करती है भगवान को। भगवान इस जगत के ज्ञान अज्ञान, नैतिकता अनैतिकता, इन सब के परे हैं भगवान। इस जगत के नियमों का उनके लिए कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार किसी राज्य में एक जेल होती है, कारागृह होता है, कारागृह में जो बंदी हैं उनके लिए जो नियम होते हैं वो नियम उस कारागृह से बाहर रहने वालों के लिए नहीं है। और मान लीजिए उस राज्य का राजा कारागृह में चला जाता है तो राजा के जाने से कारागृह में है वो, लेकिन कारागृह में जेल में रहने से वो कैदी नहीं होता, उसको कोई नियम लागू नहीं होता, कितने बजे खाना है, कितने बजे क्या करना है, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, राजा के लिए कोई नियम नहीं है। इसी तरह ये भौतिक जगत को अगर एक कारागृह मान लिया जाए और भगवान को राजा, तो जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं तो इस जगत के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। और फिर श्री राम हृदयम जो सीता देवी ने हनुमान जी को सुनाया, उसको सुनाया और उसमें लीलाओं का वर्णन किया, पार्वती ने विस्तार से पूछा और फिर भगवान की कथा को कहने लगे। उधर वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ इस प्रकार हुआ कि वाल्मीकि मुनि के मुख से एक श्राप निकल गया, मानिषाद प्रतिष्ठानम त्वं गतः शाश्वती समः यत् क्रौंचम मिथुनादेकम अग्निः काम मोहितम, और उसके द्वारा फिर आगे उन्होंने 24,000 श्लोकों की रामायण की रचना की, जो उन्होंने लव और कुश को सिखलाई। फिर लव और कुश ने जाकर अयोध्या में गाना प्रारंभ किया, भगवान ने अपने सारे मंत्रियों को, सैनिकों को, भाइयों को, सबको बिठाया और कहा कि सुनो कथा, अपनी ही कथा में आनंद ले रहे हैं भगवान। आप सोचिए जिस कथा में स्वयं भगवान आनंद लें वो कैसी कथा होगी। इसीलिए गोपियाँ जब भगवान की कथा का गुणगान करती हैं तो वो कहती हैं, तव कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है वो जलते हुए तप्त जीवन को शांत कर देती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने इसका गुणगान किया है। और क्या है ये? श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से व्यक्ति का मंगल हो जाता है। इसको गोपियां कह रही हैं भागवत में, श्रवण मंगलम। और फिर वो कहती हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको फैलाया है सारे जगत में, और वो जो लोग फैला रहे हैं वो बहुत कृपालु लोग हैं, उनको भूरिदा कहा गया, भूरिदा जना। तो गोपियां कहती हैं कि जो आपकी कथा को सारे जगत में फैला रहे हैं वो भूरिदा जना है। भूरिदा मतलब सबसे कृपालु, अपनी कृपा बरसा रहे, भगवान की कृपा को बांट रहे हैं। तो ऐसी कथा को श्री रामचंद्र जी भी सुन रहे हैं। और फिर अयोध्या का वर्णन हुआ, अयोध्या के बाद ऋषि श्रृंग का वर्णन हुआ, कैसे दशरथ महाराज की इच्छा थी। वैसे इस विषय में एक लोक कथा बड़ी प्रचलित है, आपको सुनाना चाहते हैं। लोक कथा का अर्थ होता है जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है, लोकों में प्रचलित है। जैसे कई कथाएं होती हैं, जब आप वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तो वहां पर कुछ लोग इन कथाओं को कहते हैं जो कई पीढ़ियों से वो सुनते आ रहे हैं। तो कई बार लोक कथा प्रमाणिक होती है, अर्थात सही होती है, और कई बार नहीं भी होती है। इसीलिए लोक कथा को प्रमाण नहीं माना जाता, शास्त्र को प्रमाण माना जाता है, क्योंकि जो शास्त्र की वाणी है वो सदैव सत्य होती है। तो ऐसे ही एक लोक कथा है, बड़ी सुंदर लोक कथा है दशरथ महाराज के विषय की, तो आपको थोड़ा सा सुना देते हैं। दशरथ महाराज बड़े दुखी हैं, पुत्र नहीं हो रहे, जटायु उनके मित्र हैं। जटायु एक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे हैं, भगवान प्रकट होने वाले हैं। दशरथ के घर में चार पुत्र होंगे, दशरथ यज्ञ करेंगे और यज्ञ में यज्ञ पुरुष आकर उनको पायसम देंगे और फिर उसके द्वारा उनको चार पुत्र प्राप्त होंगे। और ये जान लो जो सबसे बड़े हैं राम, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होंगे। ऋषि मुनि ये चर्चा कर रहे हैं, ऊपर से सुन लिया जटायु ने, मित्र हैं दशरथ महाराज के पहुंच गए। दशरथ दुखी बैठे हैं, चिंता में हैं, पुत्र नहीं है, क्या करना चाहिए। जटायु पहुंचे और कहा, क्या चिंता का कारण है? दशरथ महाराज ने कहा, पुत्र नहीं है, मैं राजा हूं, अगला राजा कौन बनेगा, राज्य कैसे चलेगा? जटायु ने कहा, अगर मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का मार्ग बता दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा, जो तुम मांगोगे। उन्होंने कहा, मुझे तो कोई धन लेकर कोई लाभ नहीं है, इसलिए एक काम करना, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे चार पुत्र उत्पन्न होंगे तुम्हारे, लेकिन एक शर्त है, अपना सबसे बड़ा पुत्र तुम मुझे दे देना। दशरथ महाराज ने कहा, ठीक है। क्योंकि दशरथ महाराज ने सोचा, चार होंगे, अभी तो एक भी नहीं है, अब चार में से एक चला भी जाए तो भी तीन पुत्र मेरे पास रहेंगे, इसलिए कहा ठीक है। तो जटायु ने कहा, तुम ऐसे ऐसे यज्ञ करो, यज्ञ में से पायसम होगा, सब निकलेगा, फिर तुम्हारे पुत्र होंगे इत्यादि। तो दशरथ महाराज ने वैसा ही किया, अब पुत्र हो गए, जटायु तो चले गए, अब पुत्र हो गए, थोड़े से बड़े हो गए महाराज, बड़े आसक्त दशरथ महाराज, विशेषतः रामचंद्र जी से। अब जटायु को पता चला कि पुत्र हो गए हैं, दशरथ ने बताया भी नहीं। तो जटायु आए दशरथ के पास, दशरथ से मिले, उन्होंने कहा, महाराज आपको याद है आपने वचन दिया था मुझे? दशरथ ने कहा, कौन सा वचन? उन्होंने कहा, आपने वचन दिया था कि जब आपके चार पुत्र होंगे तो सबसे बड़ा पुत्र आप मुझे दे देंगे, अब मैं उस पुत्र को लेने आया हूं। दशरथ महाराज दुखी हो गए, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता, राम को मैं अलग नहीं कर सकता, राम मेरे प्राण हैं, अगर राम को अलग किया तो मैं मर जाऊंगा। जटायु ने कहा, महाराज रघुकुल के हो आप, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपने वचन दे दिया, आज आप तोड़ रहे हो वचन। दशरथ ने कहा, कुछ भी हो, श्री राम को तो मैं नहीं दे सकता। अब ये बातचीत चल रही है कि श्री रामचंद्र जी वहां आ गए, छोटे से बालक, उन्होंने पूछ लिया, क्या बात है दशरथ महाराज इतने चिंता में क्यों हैं? तो जटायु ने कहा कि तुम्हारे पिता ने वचन दिया था कि वो तुम्हें मुझे देंगे, लेकिन अब दे नहीं रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, अगर मेरे पिता ने वचन दिया है तो मैं उस वचन को पूरा करूंगा, आज से मैं आपका पुत्र हुआ। लेकिन एक पिता को पुत्र की आवश्यकता कब होती है? जटायु ने कहा, मृत्यु के समय, क्योंकि वो उसके श्राद्ध करता। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, आज से मैं आपका पुत्र हूं और आपका ही पुत्र रहूंगा। और इसीलिए जिस समय दशरथ महाराज मरे, श्री रामचंद्र जी ने उनका संस्कार नहीं किया, लेकिन जब जटायु मरे तो श्री रामचंद्र जी वहां पर थे और उन्होंने उनका संस्कार किया। ऐसी एक लोक कथा बताई गई। खैर, तो दशरथ महाराज चिंता में हैं, ऋषि श्रृंग की कथा सुनी हमने कल, और फिर अब यज्ञ प्रारंभ हो गया, यज्ञ समाप्त हुआ, यज्ञ पुरुष ने आकर पायस दिया, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा ने उसको ग्रहण किया, और अब भगवान के जन्म का अवसर है। तो यहां तक हम कथा सुन चुके हैं, आगे इस कथा को कहेंगे। वैसे रामायण तो बहुत बड़ी कथा है, जैसे हमने बताया 24,000 श्लोकों वाली, इन बच्चों को कोई पीछे रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सबका ध्यान उनकी ओर जाएगा, कथा में ध्यान नहीं रहेगा। इन बच्चों को देखकर हमारे मन का ख्याल आता है, हमारा मन भी ऐसा ही है, कभी शांत नहीं रहता, कहीं बैठने नहीं देता। हम यहाँ हैं भगवान राम की कथा में, और हमारा मन कहीं और, कभी एक जगह शांत मन नहीं रहता, बच्चे की तरह हमेशा कूदता रहता है, उछलता रहता है। इसीलिए मन को वश में रखने की कला सीखनी चाहिए, मन को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। जहां मन को खाली छोड़ा तो मन फिर तंग करना शुरू करता है। जैसे वो कथा है, एक बार एक राजा को एक चिराग मिला, चिराग उसने घिसा तो चिराग घिसने से एक जिन्न प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका? उसने कहा कि देखिए, मैं आप जो भी कहेंगे वो करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे कभी खाली मत रखिएगा। अगर आप मुझे खाली रखोगे तो मैं आपको मार डालूंगा। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, तो क्या करना है बताइए। उन्होंने कहा जाओ, जितने भी शहर में सड़कें हैं मेरे राज्य में, उनको धोकर आओ, जाओ। राजा ने सोचा एक महीने की छुट्टी, बाद में देखेंगे क्या काम देना है। लेकिन राजा को पता नहीं था कि वो जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरह या काम करने वालों की तरह नहीं करते हैं, तो बड़े जल्दी काम करते हैं। 10 मिनट में आ गए वापस। राजा ने कहा हो गई? बोले हाँ, सारी सड़कें साफ हो गई। बोले हाँ। तो राजा सोचे अब क्या करें। बोले अच्छा, एक काम करो, सारे राज्य में जितनी भी खिड़कियां हैं, हर एक घर की खिड़की, हर एक महल की खिड़की जाकर साफ करके आओ। ठीक है, जिन चले गए। राजा ने सोचा महीना दो महीना तो जाएगा हर एक खिड़की को साफ करते करते, आधे घंटे में वापस। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले सारी खिड़कियां साफ हो गई एकदम। हाँ एकदम, अब जल्दी से काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब राजा तो बड़े चिंता में कि इसको काम क्या दे, ये तो सब काम 10 मिनट में करके आ जाता है आधे घंटे में। तो उन्होंने अपने मंत्री से सलाह की, तो मंत्री बड़े चतुर थे। मंत्री ने कहा इतनी सी बात है राजा। तो मंत्री ने बुलाया उसको, जिन्न को, देखो एक काम करो, ये एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी ऊपर जाती है ना और नीचे आती है, तुम यहां से ऊपर जाओ और वहां से नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ और फिर नीचे आओ, और जब तक दूसरा काम नहीं दे यही करते रहो। तो वो जिन्न ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, उसका काम में लग गया। और राजा के जो पसीने आए थे सब, राजा ने पूछे अच्छा है मैं बच गया। इसी तरह हमारा मन है, अगर हम मन को व्यस्त रखते हैं तो वो हमें मारता नहीं है, लेकिन अगर हमने मन को खाली छोड़ दिया तो वो निश्चित हमें आध्यात्मिक तौर पर भक्ति की दृष्टि से मार देता है। तो अब भगवान राम के जन्म का समय है। 6 ऋतुएं अर्थात करीब 12 महीने भगवान मां के गर्भ में रहे, और अब 6 ऋतुएं चली गई। ऋतुएं समझते हैं आप लोग? आजकल के आधुनिक युग में हमने महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम सुने भी नहीं होंगे, जैसे हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतुएं हैं, या इंग्लिश में जिन्हें सीजन कहते हैं। आजकल के बच्चों को पूछिए तो किसी को ऋतु नहीं पता होगी। निश्चित उनको ये पता होगा कि फिल्म का स्टार कौन है, कौन सा गाना किसने गाया, लेकिन ऋतु कौन सी है, महीना कौन सा है, किसी को नहीं पता होगा, है ना। आगे चल के यही होगा। हम लोग जब छोटे थे तो एक जोक सुना करते थे, हंसते थे, लेकिन अब ये रियलिटी हो रहा है, सत्यता हो रही है। हम लोग सुनते थे कि एक बच्चे से पूछा गया कि दूध कहाँ से आता है, तो उसने कहा डेयरी से, क्योंकि उसने जीवन में कभी गाय देखी ही नहीं। और आजकल का आधुनिक युग ऐसा ही होने वाला है, बच्चों ने गाय देखी नहीं, कभी दूध धोया नहीं, पता नहीं कि दूध कहाँ से आता है, तो उनके लिए तो पैकेट में आता है, बाजार से आता है, बस इतना है। तो भगवान 6 ऋतु अर्थात एक ऋतु 2 महीने की होती है, तो ऐसे 6 ऋतु होती हैं साल में। तो भगवान 6 ऋतुओं तक रहे, और अब उनके जन्म का समय आया। कौन से महीने में वो प्रकट हुए, कैसे आए, ये सब वर्णन किया गया। तो जब भगवान माँ के गर्भ में आए, उसी दिन से सभी और सुख हो गए। जा दिन ते हरी गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए, सारे लोकों में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर मां सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। तो जो माताएं थी उनका जो तेज था बहुत बढ़ गया, उनका जो उनके शरीर से निकलने वाली कांति बहुत बढ़ गई, क्योंकि भगवान आ गए हैं। ऐसा ही वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। जब देवकी अपने आठवें गर्भ को धारण करती हैं, आप सबको पता होगा कि देवकी का जब पहला पुत्र हुआ तो कंस के पास ले गए वसुदेव, उसके पति, क्योंकि वसुदेव ने वचन दिया था विवाह के समय ही कंस मार डालना चाहता था देवकी को, क्योंकि आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। तो कंस ने कहा आठवां पुत्र क्या, ये स्त्री ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से होगा। लेकिन वसुदेव ने वचन दिया, मैं वचन देता अपने पुत्रों को तुम्हारे पास ले आऊंगा। ठीक है, छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ, देखिए वसुदेव की सत्यता, नवजात शिशु अभी अभी जन्म हुआ है, कंस के पास लेकर आ गए, लीजिए मैंने वचन दिया था, मार डालिए इसको। और उसको देखकर कंस का भी हृदय पिघल गया कि कैसा पिता है, अपने वचन को रखने के लिए अपने नवजात शिशु को लेकर आ गया मेरे पास। कंस ने कहा नहीं नहीं, ये आठवें पुत्र को मारना है, अभी नहीं। लेकिन फिर देवताओं की योजना से कंस ने मारना शुरू किया, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा, ऐसे 6 पुत्र मार दिए देवकी के, और बड़ी क्रूरता से मारता था। जेल में रख दिया था, जब पता चलता कि पुत्र हुआ है, जाता नवजात शिशु छोटा सा बालक उसके पांव को पकड़ता और जोर से पटक देता उसको, और सर फट जाता, खून खून बह जाता। ऐसे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां पुत्र कहां गया पता नहीं, गर्भ में था अचानक कहीं चला गया, स्थानांतरण हो गया। लेकिन जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए तो देवकी का चेहरा एकदम खिल उठा, उसकी कांति बड़ी तेज हो गई, शरीर से निकलने वाला तेज इतना था कि जिसको देखकर कंस भी जान गया, मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ चुका है। केवल देवकी को देखकर वो समझ गया। तो ऐसे ही मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान, बड़ा तेज बढ़ गया उन सारी माताओं का जो अब जन्म देने वाली हैं। और फिर वो समय आ गया जिस समय पर भगवान प्रकट होने वाले थे, जितने भी ग्रह इत्यादि थे वो सब एक लाइन में खड़े हो गए, ऐसा वर्णन किया गया। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरुर अचर हर्षित राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार तिथि, जितने भी ग्रह थे, जितनी तिथियां थी, जो भी स्थितियां थी, नक्षत्र इत्यादि सब एक लाइन में खड़े हो गए। जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आता है तो बाकी सारे लोग एक लाइन में अटेंशन खड़े हो जाते हैं, और यहां तो सुप्रीम बॉस आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। तो योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। और फिर कौन सी तिथि थी, कब प्रकट हुए भगवान, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान प्रकट हुए, नवमी तिथि थी, मधु मास था। देखिए महीनों के भी नाम वैदिक सभ्यता में बड़े मधुर दिए गए हैं, मधु मास, ये जो महीना अब चल रहा है इसको मधु मास कहते हैं। अभी चार दिन बाद ही नवमी होगी, 15 तारीख को रामनवमी का उत्सव हम लोग अपने मंदिर में मनाएंगे। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, वैदिक सभ्यता में हर चीज को भगवान से जोड़ा जाता था, महीनों के नाम भी, जैसे दामोदर महीना, ऐसे महीनों के नाम हुआ करते थे जिससे भगवान का स्मरण हो। आजकल तो महीनों के नाम ऐसे हैं कि क्या बताएं, शुरुआत में ही साल शुरू होता है और क्या होता है, जन वरी, वरी यानी चिंता, राइट। तो शुरुआत में ही कहा जाता है जन यानी लोग, वरी यानी चिंता, कि आप सब चिंता शुरू कर दीजिए, साल शुरू हो गया। तो जन वरी, फर वरी, वरी वरी, केवल चिंता है। लेकिन देखिए वैदिक काल कितने मधुमास पुनीता, मधुमास है, माधव मास है, दामोदर मास है, ऐसे नाम हुआ करते थे। नामों का बड़ा महत्व होता है। आजकल तो लोग अपने बच्चों के नाम ऐसे रखते हैं कि जब बच्चों को बुलाते हैं तो पता नहीं चलता कि बच्चे को बुला रहे हैं कि अपने कुत्ते को बुला रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आप में से जो थोड़े पुराने लोग हैं वो जानते हैं, घरों में हर एक के नाम भगवान से जुड़े होते थे। किसी का राम होगा, किसी का दशरथ होगा, किसी का दामोदर होगा, किसी का गोविंद होगा, किसी का गोपाल होगा, किसी का रघुनाथ होगा। तो हर एक का नाम भगवान से जुड़ा था। लेकिन आजकल बड़ा कठिन हो जाता है, पता भी नहीं चलता है किसको बुला रहे हैं। तो इसीलिए नाम भी हमें बड़े सोच समझ कर रखने चाहिए, विशेष करके अपने बच्चों के नाम। श्रीमद् भागवत में एक कथा है कि एक बहुत बड़ा पापी था अजामिल, इतना पापी कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया। हत्या करना, चोरी करना, डाका डालना, धोखा देना रोज का काम था। लेकिन वो अजामिल जीवन के अंत में मुक्त हो गया, भगवान को उसने प्राप्त किया। कैसे? एक अच्छा काम किया जीवन में, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। आचार्य समझाते हैं कि जिस दिन उसने ये नाम रख दिया उस दिन से उसके पाप कटने शुरू हो गए, क्योंकि रोज पुकारता था नारायण इधर आओ, नारायण खाना खाओ, नारायण सो जाओ। ये नारायण 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 केवल ये बोलने से शुद्ध होने लग गया। वो एक बार भगवान का नाम जो ले लेता है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। फिर जो हर रोज ले, और फिर जो प्रेम से ले, भक्ति से ले, श्रद्धा से ले, उसका तो कहना ही क्या। इसलिए नाम बड़े महत्वपूर्ण है। तो भगवान प्रकट हुए नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। अभिजीत मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए। जब भी भगवान प्रकट होते हैं इसी मुहूर्त में प्रकट होते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए और समय भी दोपहर का था। भगवान दोपहर के समय प्रकट हुए। दिवस मध्य अति शीत न घामा, दिवस मध्य, मध्य दिवस 12 बजे करीब प्रकट हुए। अति शीत न घामा, ना बहुत धूप थी ना बहुत ठंड थी, बहुत सब बढ़िया चल रहा था। भगवान प्रकट हो रहे हैं, सब लोग एकदम अपने आप को उन्होंने सजा लिया था, पूरी पृथ्वी सज गई थी। हमने सुना कि कभी यहाँ जो नेवल बेस है कोई ऑफिसर बड़े आते हैं तो उसको सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, पेड़ों में पानी डाले जाते हैं। कुछ रोज डालते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा अफसर आता है तो बहुत एकदम साफ सफाई, ताकि उसको कहीं गंदगी दिखाई नहीं दे। तो इसी तरह भगवान आ रहे हैं तो पृथ्वी सज गई एकदम अपने आप, और बहुत सुंदर सजावट। और ऐसे समय में जब सब स्थितियां अनुकूल थी, नवमी तिथि थी, भगवान श्री राम प्रकट हुए। और फिर ऊपर से फूलों की वर्षा होने लग गई। ऐसा वर्णन है कि आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, लोग देख नहीं रहे थे कि कौन फेंक रहे हैं, लेकिन पुष्प दिखाई दे रहे थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान प्रकट हुए, सारी अयोध्या फूलों से भर गई थी। कल हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसका थोड़ा सा आपको अनुभव कराने का। यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हम लोग पुष्याभिषेक भगवान का कर सकें, अगर भगवान की इच्छा हुई, अगर नहीं हुई तो फिर वो जाने। तो इसीलिए सारी अयोध्या भर गई फूलों से, और फिर भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले श्री राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये जुड़वां हैं, तो ऐसे ये प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए, सबसे पहले श्री रामचंद्र जी कौशल्या के सामने प्रकट हुए, और ऐसा वर्णन है अध्यात्म रामायण में कि वो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए। भगवान चतुर्भुज रूप, चारों भुजाओं में अलग अलग आयुध, अलग अलग चीजें धारण किए हुए माता के सामने प्रकट हुए, कौशल्या के सामने। और जैसे ही कौशल्या ने देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं, तो उसने प्रार्थनाएं अर्पण करनी शुरू की। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कौशल्या ने की। कौशल्या कहती हैं, देव देव नमस्ते स्तु शंख चक्र गदाधर। कि हे देवों, हे देवों के देव, देवाधिदेव, देव देव नमस्ते स्तु, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदाधर, आपने हाथों में शंख चक्र गदा इत्यादि धारण किया हुआ है। परमात्मा च्युतोऽनंत पुराणस्त्वं पुरुषोत्तम, तो आप ही परमात्मा हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही परमात्मा के रूप हैं। ऐसे प्रार्थनाएं अर्पण की। और फिर कौशल्या कहती हैं कि आप ही इस सृष्टि की रचना करते हैं, इसका पालन और संहार करते हैं, लेकिन कोई आपको देख नहीं पाता। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि जैसे माला में मोती गुंथे होते हैं, और उस माला को एक रखने वाला धागा होता है, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता। मोती दिखाई देते हैं मगर धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन मोतियों को देखकर जान सकते हैं कि धागा है, अन्यथा मोती रह नहीं सकते। इसी तरह भगवान कहते हैं, जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, मैं उन्हें धारण करता हूं, धारयामि अहम्, मैं धारण करता हूं, लेकिन लोग देख नहीं पाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान को क्यों नहीं देख सकते हैं? कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अरे आप भगवान दिखाइए हमें, आप इतनी बातें करते हैं भगवान की, क्या आपने भगवान देखा है? और अगर आपने नहीं देखा तो हमें क्यों कह रहे हैं, और आपने देखा है तो हमें दिखाइए इत्यादि। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर कारण देती हैं कि क्यों व्यक्ति भगवान को देख नहीं पाता। वो कहती हैं, उनकी प्रार्थनाएं बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी कहती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं कुंती महारानी। कहती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम्, क्यों नहीं देख पा रहे हैं भगवान को? माया जवनिका छन्नम, आच्छन्नम मतलब ढका हुआ है, एक पर्दा है। क्या पर्दा है? माया का। तो क्यों नहीं देख पा रहे? माया के पर्दे से कैसे प्रतीत होता है? नटो नाट्य धरो यथा। वो कहती कि जैसे एक स्टेज पर कोई नाट्य लीला हो रही है, कोई नाटक हो रहा है, और उसमें कोई पात्र हैं। मान लीजिए कोई पति और पत्नी कोई पात्र कर रहे हैं, बच्चा सामने बैठा है, देख रहा है, लेकिन पहचान नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने इतना मेकअप किया हुआ है कि वो ढूंढता है कि कहां मेरे पिता कहां है, सामने है, लेकिन उसको नहीं पता। इसी तरह कुंती महारानी कहती है, भगवान सामने है, नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन जैसे हम एक कलाकार को पहचान नहीं पाते, इसी तरह भगवान सामने हैं, हम देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। माया जवनिका छन्नम। हम लोगों ने अपनी आंखों पर अहंकार का पर्दा डाल लिया है, इच्छाओं का पर्दा डाल लिया है। हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारी भोग करने की प्रवृत्ति हमें कृष्ण से, हमें भगवान से दूर रखती है। अन्यथा भगवान से हमें कोई दूर नहीं रख सकता। हमारा अधिकार है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर एक जीव का अधिकार है भगवान की सेवा, अर्थात भगवान की भक्ति ये कुछ लोगों के लिए नहीं है। ये गलत धारणाएं हैं कि भगवान को प्राप्त सन्यासी कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कोई वैरागी कर सकते हैं। नहीं, आप सबका, हम सबका अधिकार है भगवान को प्राप्त करना। कोई हमसे ये अधिकार छीन नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अज्ञान है, अहंकार है, इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं जो भगवान से दूर ले जाती हैं। इस जगत में आनंद लेने की इच्छा, इस जगत में भोग करने की इच्छा, अपने आप को भगवान बनाने की इच्छा। और फिर ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी बातों को फैलाते हैं, आप कुछ कीजिए इतने समय में आप भगवान हो जाएंगे। आप सब बड़े भाग्यवान हैं कि आपका भारत में जन्म हुआ, आप भारत में बढ़ रहे हैं और भगवान का विषय सुन रहे हैं। लेकिन आप नहीं जानते हैं पाश्चात्य जगतों में, अन्य देशों में दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें भगवान का कोई अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। वे सोचते हैं कि एक दिन वे ही भगवान बन जाएंगे और उनको ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं। कई लोग जाकर देते हैं, मुझे इतना पैसा दो मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। और वे लोग अज्ञान में हैं, बड़े मासूम हैं। वे सोचते हैं कि हाँ यही मार्ग है, हम भी एक दिन भगवान बन जाएं। हम सब की वो इच्छा है भगवान बनने की। हम सब कहीं ना कहीं नियंत्रण करना चाहते हैं, कोई अपने जीवन में, कोई अपने परिवार में, कोई समाज में, कोई राष्ट्र में, और कोई पूरी पृथ्वी पर। लेकिन इच्छा नियंत्रण की है। हम सब भगवान बनना चाहते हैं। कैसे मैं नियंत्रण करूं, कैसे ये सब मेरा पालन करें। अगर ये इच्छा मन में है तो आप भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन अगर इच्छा मन में सेवा की है कि मैं कैसे सेवा करूं, कैसे मैं अपना जीवन दूसरों के लिए दूं। हम सब ने कई जीवन अपने लिए जिए हैं, अपने लिए मरे हैं हम लोग। अब एक जीवन दूसरों के लिए देना चाहिए, एक जीवन भगवान के लिए देना चाहिए। बड़ा स्वार्थी होता है वो व्यक्ति जो केवल अपने लिए जीता। प्रभुपाद समझाया करते थे कि अपने लिए तो पशु भी जीता, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें दूसरों के लिए कार्य करना, दूसरों के दर्द को सीखना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकें तो मानना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा काम किया। लेकिन अगर हम अपने जीवन में ऐसे कार्य कर रहे हैं जहां लोगों की मुस्कानों को छीन रहे हैं, लोगों की प्रसन्नताओं को, उनके सुखों को छीन रहे हैं, या फिर अपने आनंद के लिए हम अन्याय कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए दूसरों के साथ अन्याय कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी भावना ये होनी चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए है। मैं क्या करूं जिससे मैं अपने इस जीवन को इस्तेमाल कर सकूं दूसरों के लिए। ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए ना हो,
चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिस व्यक्ति का भी जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत भूमि ते जन्म हैल जार, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि ते जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक कीजिए, भगवान कहते हैं। और फिर कर पर उपकार, दूसरों पर उपकार कीजिए, केवल अपने लिए मत जिए। हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा छोटा चीज, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक सन्यासी समुद्र के तट पर चल रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत सारी मछलियां, स्टार फिश, वो पानी के बहाव से बहकर बाहर आ गई और फिर थोड़ी सी अंदर चली गई और फिर बाहर आ रही हैं और बाहर तड़प रही हैं बिना पानी के। इन सन्यासी से देखा नहीं गया, इन्होंने थोड़ी एक दो मछली उठाई और फेंक दी, एक मछली, एक बड़ी मछली बाहर आ गई, उसको फेंक दिया, फिर लहर से वो बाहर आई तो फिर उन्होंने उठाया और बहुत अंदर जाकर फेंक दिया, और भी बहुत मछलियां थी, वो फेंक रहे थे। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, इतनी मछलियां बाहर आ रही हैं तो क्या उनके उनको क्या फर्क होगा। तो सन्यासी ने एक मछली उठाई और उसको अंदर जाकर फेंका और उन्होंने कहा, इसके जीवन में कम से कम फर्क होगा, क्योंकि इसका जीवन मैं बचा सका। तो इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि हम बहुत बड़े बड़े कार्य करें, हम बहुत बड़े बड़े स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, समाज के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर कार्य करें, लेकिन हमें सोचना है कि क्या मैं एक व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा ला सकूं, ये हमारे लिए लाभ है। अगर हम एक व्यक्ति का भी जीवन बदल सकते हैं, इसलिए जान लीजिए कि अपने जीवन में एक ऐसा कार्य कीजिए जिससे कम से कम एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए। और जीवन बदलने का अर्थ क्या है, जीवन बदलने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को धन दे दें, हम किसी को कोई भौतिक लाभ दे दें। व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन तब होगा जब हम उन्हें भगवान की भक्ति प्रदान करें। जैसे कल पार्वती देवी कह रही थी कि भगवान की भक्ति एक नाव की तरह है, तो ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए। आप सब से हमारी प्रार्थना है, आप सब ऐसे कार्य कीजिए। सोचिए कितने अच्छे समाज की हम रचना करेंगे, जहां हर कोई कम से कम एक व्यक्ति के लिए जीवन अच्छा कर रहा। ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। तो खैर, भगवान के जन्म की बात कर रहे थे, तो भगवान अब जन्म लेने वाले हैं। जन्म ले लिया, भगवान ने प्रार्थना की, कौशल्या ने कहा कि आपको देख नहीं पाते हैं, और फिर उसने प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र के रूप में आए और ऐसे रहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप छोटे से बालक हो जाइए, क्योंकि अब जो मेरा भाव है आपके प्रति, वो वात्सल्य भाव नहीं है, एक मां का भाव नहीं है। आपको इस तरह इस चतुर्भुज रूप में देखकर एक मां का भाव नहीं है मेरा, लेकिन मैं तो एक मां बनना चाहती हूं, आपकी मां। इसलिए छोटा सा बालक के रूप में आइए और मेरे हृदय में उस वात्सल्य प्रेम को जागृत कीजिए, जिससे मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देख सकूं। कौशल्या जब भगवान को देख रही थी तो बहुत सुंदर रूप था। उत्तर भारत में रामनवमी के दिवस पर एक बड़ा प्रसिद्ध भजन जो तुलसीदास जी की रामायण से है गाया जाता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट हुए हैं और वो उस रूप को देख रही हैं जो मुनि मनहारी बड़े बड़े मुनियों के मन को हर लेते हैं। जब श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में गए वन में, तो उस समय उन्होंने जब वन में प्रवेश किया तो वहां बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, योगी थे, तपस्वी थे। जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, भगवान के रूप, भगवान के सौंदर्य पर आकर्षित हो गए और उन्होंने भगवान से इच्छा की कि हम आपके ही साथ रहना चाहते हैं। और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि इस बार नहीं, इस लीला में नहीं, लेकिन अगली बार जब मैं कृष्ण आऊंगा कृष्ण के रूप में, तो उस समय आप गोपियां बनना। देखिए, शास्त्र को अगर हम पढ़ें तो भगवान की लीलाओं के मर्म को समझ सकते हैं। भगवान के साथ जो गोपियां लीलाएं कर रही थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए उन्हें साधारण एक पुरुष और स्त्री के बीच के संबंध को नहीं समझना चाहिए। तो वो सारे ऋषि मुनि दंडकारण्य के जो भगवान के प्रति आकर्षित हुए थे, फिर वो गोपी बने। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि गोपी बनना, तब हमारे साथ आप रह सकोगे। तो ऐसे रूप है, मुनि मनहारी मुनि के मन को हर लेते हैं और भगवान के उस रूप को कौशल्या देख रही हैं। बड़ा सुंदर रूप। तो अब चारों प्रकट हो गए और उनके फिर नामकरण हुए, बड़े महत्वपूर्ण उनके नाम भी हैं। जैसे हम सब जानते हैं भगवान का राम, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण दिए गए, तो इन नामों का क्या महत्व है? राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ होता है जो रमण करते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते। तो जो रमण करते हैं अर्थात जो हमेशा आनंद लेते हैं, उन्हें राम कहते हैं। वैसे राम शब्द के कई और अर्थ भी दिए गए हैं। राम शब्द का एक अर्थ है कि जो श्री या लक्ष्मी देवी के साथ रमण करें उनको राम कहते हैं। राम शब्द के और भी महत्वपूर्ण अर्थ हैं। एक अर्थ दिया गया है राम शब्द का दो शब्दों से बनाकर, रति और मही। रति का र और मही का म लेकर राम बना। तो रति मतलब आकर्षण और मही मतलब पृथ्वी या ये ब्रह्मांड। तो इस सारे ब्रह्मांड को जो आकर्षण प्रदान करते हैं वो श्री राम हैं। दूसरे शब्दों में इस सारे ब्रह्मांड के जो सर्व आकर्षक व्यक्ति हैं वो श्री राम हैं। और एक अर्थ दिया गया भगवान राम के नाम का, रावणस्य मरणम। रावण का रा और मरणम का म। तो राम शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो रावणस्य मरणम अर्थात रावण की मृत्यु का कारण बनेगा, उसे राम शब्द, उसे राम कहा गया। और आप सब जान लीजिए कि ये रावण हम सब के पास भी है। हमारा मन एक रावण की तरह है। जैसे रावण केवल भोगों में लगा रहता था, पापों में लगा रहता था, हमारा मन भी खींचता है हमें। तो रावण जैसे मन को वश में करने के लिए हमें श्री राम जी की भक्ति करनी चाहिए। और राम की भक्ति करने का मार्ग क्या है? क्या राम की भक्ति बहुत कठिन है? क्या हमें हिमालय में जाना है? क्या हमें बड़े बड़े यज्ञ करने हैं? क्या करना है? बड़ा सरल है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणम। हे राजन, ये जो कलयुग है ये दोषों का सागर है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण। लेकिन इसमें एक महान गुण है और वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल कीर्तन करने से भगवान के नाम का व्यक्ति मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल कीर्तन करने से। तो इसलिए भगवान की भक्ति इस कलयुग में बड़ी सरल है। हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, एक पांव पर खड़े होने की जरूरत नहीं। घर में रहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत में, स्थाने स्थित श्रुति गतांत अनुवाक मनो भी। आप जिस स्थान में हैं उसी में स्थित रहिए। स्थाने स्थित श्रुति गतां, लेकिन क्या कीजिए, सुनिए। और तनु वाक मनो भी, अपने तन को, अपनी वाचा को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाइए। बस ये तो बड़ा सरल है। आप जानते हैं भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? शास्त्रों में कई श्लोक हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कहे गए हैं। अर्थात भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलकेन वा विक्रीडयन्ति। वो कहा गया है कि भगवान तुलसी का दल और इतना सा जल, हम लोग कहते हैं अंजलि में जल लेना, बस। तो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, भगवान उसके द्वारा अपने आप को बेच डालते हैं उस व्यक्ति को जो उससे उनकी पूजा करता। बताइए कौन व्यक्ति है इस जगत में जो कह सकता है कि मेरे पास ये भी नहीं है, मैं भगवान को पानी भी नहीं दे सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो कुछ नहीं, बड़ा सरल क्या है, क्या बताते हैं भगवान? पत्रम, पेड़ का पत्ता, पुष्पम, फूल, फलम, फलम याने फल, और तोयम जल। अभी चार चीजें प्रभुपाद एक बार प्रवचन में कह रहे थे, बताइए किसके लिए कठिन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक पत्ता नहीं ला सकता भगवान के लिए, फल नहीं ला सकता, फूल नहीं ला सकता, जल नहीं ला सकता? तो भक्ति करना कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। बस भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। भगवान आपके धन के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसलिए जो प्रेम उनको अर्पण करता है भगवान उसके हो जाते हैं, उसको बिक जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। तो भगवान राम, रावणस्य मरणम, रावण जैसे अपने मन को वश में करने के लिए भगवान राम की भक्ति बहुत आवश्यक है। तो ऐसे भगवान के नाम दिए गए, फिर भरत के नाम दिए गए। भरत का अर्थ है जो भरण करें, पोषण करें। तो भरत बहुत अच्छा, अनुशासन में बड़े अच्छे रहे तो भरत कहलाए। भरत यानी जो भरण पोषण करते हैं। लक्ष्मण यानी जो सब शुभ लक्षणों से भरे हुए हैं, या उनके नाम से ही सब शुभ हो जाता है। और शत्रुघ्न अर्थात जो शत्रु को मारने वाले हैं। तो ऐसे ये नाम दिए गए और अब ये सब बड़े होने लगे। बहुत सुंदर वर्णन किया गया अध्यात्म रामायण और अन्य स्थानों पर भगवान की बाल लीलाओं का। तो भगवान कैसे बाल लीला कर रहे हैं? भगवान ने गहने पहने हुए हैं और जब चलते हैं तो उसकी बड़ी आवाज आती है। पांव में नूपुर है, गले में माला है, छोटे छोटे हैं। एक बहुत सुंदर भजन लिखा गया है, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र खिलकी खिलकी उठत धाय, पड़त भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत। तो भगवान चलते हैं और फिर कभी कभी खेलते थे, दशरथ महाराज बुलाते थे, भोजन लेकर तैयार हैं और खाने के लिए और बुला रहे हैं और रामचंद्र जी खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो हंसते थे। दशरथ महाराज कौशल्या से कहते थे जाओ पकड़ कर लेकर आओ उसको, और कौशल्या भाग रही है पीछे पीछे। ऐसा वर्णन अध्यात्म रामायण में है कि कभी कभी कौशल्या गिर जाती थी, ध्यान नहीं रहता था, भागते भागते कभी कुछ हो जाता था, लेकिन ये बच्चे बड़ी तेजी से भागते थे। ऐसे भगवान को कौन पकड़ सकता है। यशोदा माता ने भी प्रयास किया श्री कृष्ण को पकड़ने का, पकड़ नहीं पाई। अंत में जब श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकारा तभी पकड़ पाई। भगवान को तो बड़े बड़े योगी भी पकड़ नहीं सकते। प्रयास करते हैं वे लोग अपनी सारे मन के बल से, अपनी सारी तपस्या से, लेकिन भगवान को पकड़ना संभव नहीं। तो फिर कभी कभी अपने आप से आ जाते, मिट्टी में हाथ होते सारे, उसी हाथ में थोड़ा सा वो चावल रख देते दशरथ महाराज, उसी को खा लेते और फिर भाग जाते। और कभी कभी जैसे कौशल्या माता कुछ व्रतों का पालन किया करती तो बड़ा मुश्किल होता व्रत का पालन करना, क्योंकि करने नहीं देते थे, जो बनाती थी वो खा जाते थे। एक बार वर्णन है कि कौशल्या माता ने उनको पालने में बिठा दिया और वो चली गई अपना कार्य करने के लिए, और जब वहां गई भोग लगाने लगी तो देखा वहां बैठा हुआ है, तो अरे ये यहां कैसे आ गया। फिर गई पालने में तो देखा वहां भी लेटा हुआ है, बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां भी है यहां भी है, कौशल्या को चक्कर आ गया, ये क्या हो रहा है। कभी कभी एक समय की बात है कि कौशल्या कुछ काम कर रही थी, रामचंद्र जी आए, बोले बहुत भूख लगी है जल्दी से कुछ खिलाओ। कौशल्या ने ध्यान नहीं दिया, व्यस्त थी कार्य में, तो इतना गुस्सा आया उन्हें कि उन्होंने एक छड़ी ली और सारे जितने मटके थे वहां से तोड़ डाले, सब धार धार धार, और फिर जो कुछ था उसमें सब भरत को शत्रुघ्न को खिला दिया। अब चारों खा रहे, कौशल्या आई, देखते ही सब भागे वहां से। तो कौशल्या जोर जोर से हंसने लग गई अपने बालकों की ऐसी लीलाओं को देखकर। तो ऐसे रामचंद्र जी ने किया और फिर गुरुकुल में गए, गुरुकुल में पढ़ाई कराने गए, दशरथ महाराज बैठे, वशिष्ठ मुनि थे, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब इनकी विद्या आरंभ होगी, दशरथ महाराज आप चले जाइए। दशरथ महाराज ने कहा क्यों, मैं देखना चाहता हूं। बोले नहीं आप नहीं रहेंगे, आप जाइए फिर इनकी विद्या प्रारंभ होगी। खैर दशरथ महाराज चले गए तो वशिष्ठ मुनि ने सबसे पहले प्रदक्षिणा की रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, प्रणाम किया और उनको कहा कि अरे आप हर बार ऐसा ही करते हो। तो रामचंद्र जी ने कहा क्या करता, ले आप आते हो किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाते हो और फिर उससे सीखते हो, मेरी क्या शक्ति है आपको सिखाने की, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो खैर ऐसे बहुत सुंदर लीलाएं हुई और उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि अब दशरथ महाराज सोच रहे थे, अब थोड़े बड़े हो गए और करीब 15 वर्ष के करीब हो गए, 15-16 वर्ष के, और उस समय दशरथ महाराज सोच रहे थे कि रामचंद्र जी का विवाह का विषय, कि अब विवाह करना चाहिए इनका। और जैसे ही उन्होंने सोचा उनको सूचना मिली आपके द्वार पर विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं, आप जानते हैं वो एकदम क्रोध कर देते हैं, वो और दुर्वासा मुनि ये सब बड़े क्रोधी लोगों में आते हैं। तो बड़े घबरा गए दशरथ महाराज, भाग भाग कर गए, स्वागत किया, बुलाया, उनके चरण धोए, आतिथ्य स्वागत। दरअसल हमारा वैदिक सभ्यता हमें अतिथि के स्वागत के लिए प्रेरणा देता है कि कैसे हमें अतिथि का स्वागत करना चाहिए। केवल बोलना नहीं चाहिए अतिथि देवो भव, लेकिन जब अतिथि घर में आए तो अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आ जाते हैं, जो बता के नहीं आए। तो स्वागत किया और फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने वचन दे दिया बिना पूछे दशरथ महाराज ने विश्वामित्र को कि आप जिस भी काम के लिए आए हैं मैं वचन देता हूं आप निराश नहीं होंगे, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा, आप कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे, देखिए। और फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा बहुत अच्छा। विश्वामित्र मुनि प्रसन्न हो गए कि अरे वाह इतना अच्छा राजा है, बिना बोले ही कह दिया कि जो चाहिए वो दे देंगे। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और उसमें 2 राक्षस बड़ी बाधा डालते हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दें जो मेरे यज्ञ की रक्षा करें, बस इतनी सी बात है। दशरथ ये सुन के एकदम, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में कि करीब एक घंटे तक बेहोश हो गए वो, रामचंद्र जी को ले जाना। और फिर उन्होंने कहा वाल्मीकि मुनि से कि ये तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है, ये युद्ध कला नहीं जानता है, कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, और आप इसको क्यों ले जा रहे हैं? आप मुझे कहिए कौन राक्षस है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं, मेरी सारी सेना चलेगी, मैं उसका नाश करूंगा। है कौन वो? वाल्मीकि ने बताया वो एक रावण नाम का राक्षस है, ये उसके संबंधी हैं, उसके भाई बंधु हैं मारीच और सुबाहु, तो उनको मारना है। दशरथ ने जैसे रावण का नाम सुना, दशरथ ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, रावण से तो मैं भी नहीं जीत सकता, मेरा बच्चा तो छोड़िए, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं अपनी सारी सेना लेके चलूंगा, लेकिन राम नहीं जाएगा। तो उस समय बहुत क्रोध आ गया विश्वामित्र मुनि को, उन्होंने कहा अभी अभी आपने वचन दिया है कि जो भी मैं चाहूंगा वो करेंगे। तो फिर वशिष्ठ मुनि वहां पर थे, उन्होंने शांत किया और वशिष्ठ मुनि ने समझाया। दरअसल दो स्थानों पर अलग अलग वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं किया गया कि कैसे उन्होंने समझाया विस्तार से, लेकिन अध्यात्म रामायण में बताया गया कि वो अलग से ले गए और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं राम कौन है, कोई साधारण पुरुष नहीं, उसको कुछ नहीं हो सकता, और आप क्या सोचते हैं विश्वामित्र मुनि क्या मार नहीं सकते, विश्वामित्र मुनि भी मार सकते हैं, लेकिन वो राम का गुणगान कराना चाहते हैं, इसीलिए आपको जाने देना चाहिए। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोग इससे सीखते हैं कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, वैसे विश्वामित्र मुनि आए थे, उनके आने का एक ही उद्देश्य था कि वो राम को सीता से मिलाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी चीज को भविष्य में होने वाली हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए जो इस समय थोड़ी सी बुरी चीज हो रही है उससे विचलित हो जाते हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं कि आगे भविष्य में अच्छा होगा। अगर हम लोग इस समय इन चीजों का पालन कर लें, इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक गुरु के आदेश का पालन करें। जैसे यहां पर हम देखते दशरथ महाराज के लिए विश्वामित्र गुरु के समान हैं, तो गुरु के आदेशों का जो पालन करता है वो निश्चित सुखी रहता है। भक्ति में प्रगति केवल गुरु के आदेशों के पालन से हो सकती है, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु वो व्यक्ति है जो आपको भगवान से मिलाते हैं। ऐसा कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला। कि अगर गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो किसके पहले पांव छूने चाहिए? पहले गुरु के छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद दिया मिला है, गुरु ही हैं जो भगवान तक ले जाते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग ये है कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें। हो सकता है वो आदेश आज हमारे लिए सही ना लगे, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि आगे चलकर हमारे लिए यही सुख का मार्ग होंगे। तो ऐसे हमें गुरु के आदेशों का पालन अपने जीवन में निश्चित कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। भक्ति का मार्ग है ही यही। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, कितना कठिन है भगवद गीता को ही समझना। वैसे आप सबसे विनती है कि आप सबको भगवद गीता घर में रखनी चाहिए। ये मत सोचिए कि भगवद गीता रखने से, लोग कहते हैं वो चित्र रखने से कुछ झगड़ा हो जाएगा। कुछ साल पहले हम लोगों ने बच्चों के लिए प्रतियोगिता की थी भगवद गीता के आधार पर, आंध्र प्रदेश में ये प्रतियोगिता हुई, करीब 23,000 बच्चों ने भाग लिया, और उसमें से प्रथम द्वितीय और तीसरा स्थान जिनको आया उनको देने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया। उस प्रोग्राम में जो दूसरे स्थान पर आया वो एक लड़का था जो मुसलमान था, तो जब उसको पुरस्कार दिया जा रहा था तो उसने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो उसको माइक दिया गया। तो उसने कहा, छोटा बच्चा था, छोटा स्कूल जाने वाला लड़का, तो उसने एक प्रश्न किया। उसने कहा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, हम सब के घर में कुरान होती है, मैं अपने क्रिश्चियन लोग घरों में जाता हूँ, क्रिश्चियन मित्रों के, उनके यहाँ बाइबल होती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि हिंदुओं के घरों में भगवद गीता नहीं होती, ऐसा क्यों है? तो कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्या उत्तर दें वहाँ पर, सारे स्टेज पर सबके सामने उसने पूछा कि हमारे आपके घरों में भगवद गीता क्यों नहीं रखते हैं। तो इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि भगवद गीता को घर में रखना चाहिए, बहुत अच्छा संदेश, और रखना ही नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए रोज ये भगवान की आराधना के समान है। तो आप में से जिनके घरों में नहीं है, वहाँ पर भगवद गीता अवेलेबल है, मिल रही है, आप कृपया आज नहीं तो कल निश्चित भगवद गीता लेके जाइए, अपने घर में रखिए और उसको पढ़िए रोज, तो जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो भगवान के विषय में। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि खैर वहां पर आए, फिर रामचंद्र जी चल दिए साथ में। रामचंद्र जी ने को उन्होंने विश्वामित्र को अब अपना गुरु मान लिया कि अब जो वो कहेंगे वो करेंगे, और रामचंद्र जी चल दिए साथ में। राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि अब चले सिद्धाश्रम की ओर। दरअसल रामायण की कथाएं अब प्रारंभ होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर कथाएं रामायण की। हमने कल भी कहा था कि ये 3 दिन की कथा है, जितना इन 3 दिनों में कथा हो सकेगी करेंगे, फिर अगले वर्ष उसको आगे बढ़ाएंगे। तो रामचंद्र जी अब चले, बीच में कई कथाएं हुई, उन्होंने कई स्थानों को देखा। गंगा में एक बीच में पहुंचे तो वहां पर कोई 2-3 नदी मिल रही थी, ऐसे बहुत से स्थानों को देखते हुए अब वो पहुंचे एक बड़े निर्जन वन में। और ये वन था जहां एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताटका। अब भगवान पहले असुर का वध करने वाले हैं। तो ताटका ये एक राक्षसी थी, बहुत बल था इसमें। तो रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से पूछा कि ये एक स्त्री होकर इसके अंदर इतना बल कहां से आ गया? तो उन्होंने बताया कि दरअसल इनके पिता ने तपस्या की थी, वो एक यक्ष थे, तो इनके पिता ने तपस्या की एक पुत्र को पाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पुत्री प्रदान की तो बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पुत्री को 10,000 हाथियों का बल देता हूं। तो इसीलिए इसको 10,000 हाथियों का बल है इसके अंदर। अरे फिर आगे चल के इसने राक्षस से विवाह कर लिया, राक्षसी हो गई, तो अब ये सबको मारती है, तो तुम्हें उसका वध करना है। तो भगवान सोच रहे थे कि पहला ही राक्षस मारना है, वो भी एक स्त्री। शास्त्रों में वर्णन है कि हमें वृद्धों को, बच्चों को, ब्राह्मणों को, गायों को और स्त्रियों को कभी नहीं मारना चाहिए, ये वर्जित है, इनकी हमेशा रक्षा होनी चाहिए, इनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। कई बार लोग ये कहते हैं, ये गलत धारणाएं बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि शास्त्रों में, आपके नियमों में स्त्रियों को और पुरुषों को अलग करके बहुत बहुत ही भेदभाव किया जाता है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। ये भेदभाव नहीं है, ये आदर देने की बात है कि हम आदर प्रदान करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बच्चे हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वृद्ध हैं, गायें हैं और स्त्रियां हैं, इनकी हर अवस्था में रक्षण करना चाहिए। इसीलिए देखिए, पहले बड़े बड़े युद्ध होते थे, कितने बड़े बड़े युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ लेकिन स्त्रियों को नहीं मारा जाता था। और ये महाभारत का युद्ध ही क्यों हुआ? एक स्त्री के अपमान के लिए। इसलिए अगर वैदिक शास्त्र को देखें तो वैदिक शास्त्र स्त्रियों को बहुत सम्मान प्रदान करता है। इसीलिए गलत धारणाएं नहीं लेनी चाहिए कि वेदों में, शास्त्रों में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया गया, बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। तो खैर, रामचंद्र जी को अब ताटका का वध करना है। रामचंद्र जी ने वहां पहुंचे और युद्ध प्रारंभ हुआ। उन्होंने जोर से अपने धनुष की टंकार की, ताटका भागी भागी आई, और उस समय रामचंद्र जी की इच्छा नहीं हुई मारने की, और विश्वामित्र समझ गए। विश्वामित्र मुनि ने कहा, अरे मारो, चिंता नहीं करो, वो स्त्री है, ये मत सोचो कि स्त्री को मारना नहीं चाहिए, फिर भी रामचंद्र जी की इच्छा नहीं हो रही थी, उन्होंने हाथ काट दिए और लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण को जरा पता नहीं नाक और कान से बड़ी क्यों वैर है, हमें नहीं पता, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ताड़का के नाक कान आगे भी काटेंगे, आपको हम सुनाएंगे आगे भी, उन्होंने नाक कान काट दिए। तो ताटका के भी नाक कान काट दिए, भगवान ने हाथ काट दिए, भगवान सोच रहे थे अब छोड़ देते हैं इसको, अभी क्या करेगी, हाथ कट गए सब हो। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने कहा नहीं, ये राक्षसी है, ये मायावी है, रूप बदल लेगी, तो मारो इसको। तो फिर अंत में भगवान को उसको मारना ही पड़ा, और ऐसा वर्णन है कि जब भगवान ने उसको मारा तो फिर वो मरी और उसमें से फिर अपने मूल स्वरूप जो यक्षिणी के रूप में वो प्रकट हुई और फिर अपने स्थान को वापस चली गई। ये भगवान की कृपा है, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, भगवान कभी किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर भगवान किसी को मारते भी हैं तो भी उसका उद्धार हो जाता है। भगवान ने पूतना को मारा, कृष्ण ने पूतना को मारा, वो भगवान के धाम चली गई। जो भी भगवान के हाथों मरता है वो तो निश्चित शुद्ध होगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है वो निश्चित मेरे पास आता है। तो जो स्मरण करके भगवान का भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो भगवान के हाथों मारा जाएगा क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा? इसलिए भगवान और भगवान के भक्त, वो चाहे आशीर्वाद दें या दंड, दोनों समान है। नारद मुनि ने नलकुवर और मणिग्रीव को दंड दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, लेकिन वो आशीर्वाद हुआ क्योंकि वृक्ष के रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा। तो इसीलिए भगवान जो भी करते हैं हमारे जीवन के लिए अच्छा ही होता है, और जो व्यक्ति ये जान लेता है वो मुक्ति का अधिकारी है। भागवत में कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते नुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुरुभि विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हर अवस्था को भगवान की कृपा मानता है, तत्तेनुकंपा अनुकंपा है आपकी, सुख है भगवान की कृपा, दुख है भगवान की कृपा। अब सुख को तो भगवान की कृपा माना जा सकता है, दुख को कैसे भगवान की कृपा मान सकते हैं? दुख तो कभी भगवान की कृपा नहीं होता। इसके लिए आपको एक उदाहरण देते हैं कि दुख भी भगवान की कृपा है। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि भगवान रोज खड़े रहते हैं मंदिर में, थक गए होंगे खड़े खड़े, तो उसने जाकर प्रार्थना की कि भगवान आज एक दिन आप जरा कहीं घूम कर आइए, जरा समुद्र बीच वगैरह थोड़ा आराम से घूम आइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ आपकी जगह पर। भगवान ने कहा इजी नहीं, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अरे आप चिंता मत करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम खड़े रहो लेकिन कुछ बोलना नहीं, चुपचाप खड़े रहना, मैंने सब सेट कर दिया है। तो उसने कहा चिंता नहीं, आप जाइए। तो भगवान चले गए, अभी हमारे नकली भगवान खड़े हो गए। अब सुबह सुबह मंदिर खुला, नकली भगवान खड़े हैं, अब लोगों को तो नहीं पता नकली भगवान खड़े हैं। तो एक बड़ा अमीर आदमी आया, उसने प्रणाम किया, भगवान मेरी फैक्ट्री में पैसा बहुत आ रहा है और बाने दो, प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया उसकी जेब में बटुआ था, बहुत पैसा था, वो गिर गया, उसने देखा नहीं तो जाने लगा। तो जैसे ही जाने लगा अब हमारे नकली भगवान ने देखा, अरे उसका बटुआ गिर गया, इतना पैसा। तो बोलने वाले थे कि भाई पैसा ले जाओ अपना, लेकिन याद आया भगवान ने बोला था कुछ बोलना नहीं, एकदम ठीक है चुपचाप खड़े रहे। तो वो व्यक्ति चला गया, पीछे एक गरीब व्यक्ति आया, बहुत गरीब, रोने लगा, भगवान क्या करा रहे हो, खाने को पैसा नहीं, अगर आज मुझे पैसा नहीं मिला तो घर से भी बाहर निकाल दिया जाऊंगा, आपके यहाँ मैं रोज आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि करके उसने सर पटका नीचे। जैसे ही नीचे पटका तो देखा बटुआ पड़ा हुआ, पैसों से भरा हुआ। उसने कहा भगवान वाह, आप तो बड़े दयालु निकले, आपने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी। उसने पैसे गिने, बोले पूरे हैं एकदम, अब तो घर भी रह जाएगा, सब हो गया। तो ले जाने लगा। अब हमारे नकली भगवान, वो रोकना, ये मैंने नहीं दिया भाई, रुक जाओ। लेकिन वो रोकने पर भगवान ने कहा था बोलना नहीं, चुपचाप खड़े रहे। तो उसके बाद वो चला गया। और उसके बाद एक व्यक्ति आया जो समुद्र में जहाज में जाने वाला था, सेलर था। तो वो आया, वो प्रार्थना करने लगा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा जहाज जा रहा है, शिप जा रहा है, तो थोड़ी रक्षा करना, समुद्र में बारिश का समय है, बहुत कुछ ऊंचा नीचे होता है। तो प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में वो जो पहला व्यक्ति था जिसके पैसे गिरे थे, वो पुलिस को लेकर आ गया। और आते ही उसने उस सेलर को खड़े देखा, बोला यही व्यक्ति है, मेरे बाद यही मंदिर में आया, इसने ही चोरी की है, मेरा बटुआ इसने चुराया, पकड़ो इसको, पूछो कहाँ रखा है। तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको, सेलर को। वो सेलर बोले नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी आया, वह नहीं, इसी ने पैसा चुराया। तो अभी तक, और पकड़कर उसको ले जा रहे थे पुलिस वाले, तो अभी तक हमारे नकली भगवान चुप खड़े थे, लेकिन अब कैसे चुप रहे, इतना अन्याय वो देख रहे हैं, पैसा उसने नहीं चुराया, किसी और ने चुराया, उसको ले जाया जा रहा है। तो अंत में उन्होंने बोल ही दिया, रुक जाओ। तो ये लोग देखने लगे, कौन बोल रहा है, भगवान आप बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ? भाई इसने नहीं लिया पैसा, वो पैसा इसके पहले एक गरीब आदमी आया था, वहाँ वहाँ रहता है वो, उसका घर है, वो बोल रहा था, तो वो उसके पास वो बटुआ गया है, उसको जाके पकड़ो, इसको नहीं पकड़ना, छोड़ दो इसको। तो पुलिस वाला, अच्छा अच्छा भगवान बोल रहे हैं तो सही होगा, छोड़ दिया उसको, तो चले गए। अब भगवान वापस आए, तो जब हमारे ओरिजिनल भगवान वापस आए, तो ये नकली भगवान को कहा कि चलो भाई अब उतर जाओ। तो भगवान ने खड़े होने से पहले पूछा, कुछ किया तो नहीं ना, कुछ बोला तो नहीं? बोले अरे आप सुनोगे तो एकदम खुश हो जाओगे, आज मैंने वो काम किया है जो आप भी नहीं कर सकते। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था। बोले आप सुनिए तो क्या किया आपने? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तो भगवान ने कहा अरे क्या किया तुमने? तो बोले क्यों, इतना अच्छा काम किया मैंने। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो अमीर आदमी था उसके पास बहुत पैसा है, उसका थोड़ा सा पैसा चला जाता तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गरीब आदमी बेचारा मर जाएगा बिना पैसे के, तो इसलिए मैंने योजना की थी कि पैसा उसको मिल जाए। तो उसने कहा हाँ हाँ, लेकिन उसका क्या? उसने पूछा हमारे नकली भगवान ने, कि वो जो सेलर था वो तो बेचारा बेकार में जा रहा था ना जेल में, उसको तो मैंने बचाया, वो तो कोई गलत नहीं है, उसका क्या? तो भगवान ने कहा अरे मूर्ख व्यक्ति, वो जिस शिप में जा रहा है वो शिप डूबने वाला है, इसीलिए मैं उसको जेल में भेज रहा था 15 दिन के लिए, कि ताकि शिप चला जाए और उसको कुछ नहीं हो, और तुमने सारी गड़बड़ कर दी। तो देखिए भगवान जो भी करते हैं, अगर गलत भी हो तो तत्ते अनुकंपा, भगवान की कृपा समझना चाहिए जो भी हमारे जीवन में हो, और उसी लिए उसी प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। इसलिए मान लीजिए जो अच्छा भी होता है वो भी भगवान की कृपा है, बुरा भी हो रहा है वो भी भगवान की कृपा है। एक समय श्रील प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी पर थे, तो उनके एक शिष्य भगवान के लिए सब्जी काट रहे थे, तो सब्जी काटते 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 अचानक उनकी उंगली कट गई एक पूरी। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं भगवान के लिए भोग बना रहा था, अपने लिए नहीं, फिर मेरी उंगली कैसे कटी? अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो उसको तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा सर कटना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो इसलिए केवल उंगली कटी है, धन्यवाद दो भगवान को। ये हमारा भाव होना चाहिए, कष्टों में भगवान को हम धन्यवाद दें, सुखों में भगवान का स्मरण करें। और इस तरह अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हम बड़े सुखी रह सकेंगे और जीवन के अंत में भगवान को निश्चित प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ताटकावध का वर्णन हुआ है, कल मारीच और सुबाहु का वर्णन करेंगे कि कैसे मारीच और सुबाहु ने के साथ भगवान का युद्ध हुआ। और तो कैसे भगवान ने युद्ध किया, बहुत सुंदर वर्णन है उसका भी, और फिर भगवान के विवाह का भी वर्णन कल करेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है भगवान के विवाह का, उसको भी कल करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा, नहीं तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे और फिर आप सब लोग प्रसाद ले सकेंगे। नहीं, उसी को आगे बढ़ाना है, ऑन रखो उसको। आपने वो जो शो पहले था, पावर पॉइंट शो शुरू करो उसको, शो शुरू करो। चेंज नहीं करना, F5 दबाओ। स्लाइड शो कैसे शुरू करते हैं उसको शुरू करो। हाँ तो बस अभी नेक्स्ट लेके जाओ, क्यों उसको चेंज कर रहे हो, नेक्स्ट दबाओ उसको बस। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा मन में, ठीक है तो एक भजन गाएंगे, छोटा सा भजन है, आप सब इसमें साथ दीजिए और फिर आप सब प्रसाद लीजिएगा। भगवान राम का वर्णन है, ऐसा ही भजन कृष्ण के लिए भी गाया गया है और श्री रामचंद्र जी के लिए।
राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, राम
लोग बहुत धीरे गाते हैं, ऐसा लगता है किसी ने आपका गला पकड़ लिया है और आवाज नहीं निकल रही, ऐसा हो रहा है। थोड़ा पकड़ा नहीं है, थोड़ा जोश में गाइए, भगवान का नाम है। हाँ, आपने अभी डिनर नहीं लिया है, मानते हैं थोड़ी शक्ति कम है, लेकिन फिर भी इतनी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, राम ऐसे श्री रघुनाथ को बारंबार प्रणाम है, ऐसे ऐसे श्री रघुनाथ को बारंबार प्रणाम है, कौशल्या जिनकी माता है, दशरथ जी के बाबा है, कौशल्या जिनकी ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, विश्वामित्र के यज्ञ रखवारे, गौतम नारी अहिल्या तारे, विश्वामित्र के यज्ञ रखवारे, गौतम नारी अहिल्या तारे, विश्वा ऐसे करुणा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे ऐसे करुणा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बजरे बजर नंदन राम रे बजरे दशरथ नंदन बजरे दशरथ नंदन राम रे भज राजनक के पाप मिटाए सीता जाही अयोध्या लाए राज राजनक के पाप मिटाए सीता जाही अयोध्या लाए ऐसे सीता नाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सीता नाथ को बारंबार प्रणाम है। बजरे दशरथ नंदन राम रे भज इस वचन से दुख न सिधारे संग जानकी लक्ष्मण प्यारे इस वचन पीत वचन से विपिन सिधारे संग जानकी लक्ष्मण प्यारे सभी के राम को बारंबार प्रणाम है। सभी के सबरी के प्रिय राम को बारंबार प्रणाम है। बजरे दशरथ नंदन राम रे भज के धार महारे राक्षस मारी कष्ट सब सारे धनुष बाण के धार महारे राक्षस मारी कष्ट सब सारे धनुष हनुमान के प्राण को बारंबार प्रणाम है। हनुमान के हनुमानक प्राण को बारंबार प्रणाम है। बदले भज रघुनंदन राम रे भज दशरथ भजले दशरथ नंदन राम रे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम 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 राधा राम 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 सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय जय सीता राम जय जय सीता राम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहो हरि बोल
गौर प्रेमानंदे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक विषय के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग सब समय पर आए। आज एकदम 7 बजे सब भरा हुआ था यहाँ पर पूरा हॉल, शायद ऐसा हुआ था या हमने ऐसा स्वप्न देखा था। कृपया कल समय पर आइए, आखिरी दिवस है, प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा भगवान का विवाह तक पहुँच जाए, विवाह के अभी आगे परशुराम जी की कथा भी हो सके। बहुत महत्वपूर्ण कथा है परशुराम जी की, कैसे उन्होंने शक्ति को प्राप्त किया और कैसे भगवान से उनका संवाद हुआ, भगवान ने उनको क्या दिया, तो ये भी कल वर्णन करने का प्रयास करेंगे अगर आप लोग सब समय पर आए तो इसको सुन सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी तक निश्चित नहीं हो पाया कि कल यहाँ पर भगवान के विग्रह का पुष्प अभिषेक करें। अगर आप सबकी इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई, तो कल इसको कर पाएंगे, नहीं तो कथा और कीर्तन तो जारी ही रहेगा। तो कृपया कल ठीक 7 बजे फिर से आपसे प्रार्थना है, 7 बजे आइए, कथा को हम लोग कह सकते हैं। विशेष हम कुछ कहें, बोलिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम आप सबकी बहुत आभारी है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है। आज का जो बिना प्रसादों का स्पॉन्सर है वो रविकांत यादव और उनकी फैमिली, तो उनके लिए हम 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राज का जो स्पेशल लड्डू प्रसाद है वो चीफ पेटी ऑफिसर विजय प्रताप सिंह ने स्पॉन्सर किया, तो उनके लिए भी 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सबके लिए बिना प्रसादन का बिन प्रसादन अवेलेबल है, तो प्रभु जी के लिए जेंट्स के लिए अलग काउंटर है और माता जी के लेडीज के लिए अलग काउंटर है, तो कृपया सब लोग प्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्ण।
वैसे आपको एक बात बताना चाहते हैं, केवल इनको देखकर हमें याद आया कि ये विक्रमादित्य शिप पर हैं, तो हम कल यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तो कई लोगों की इच्छा थी कि ये कथा को सुने आकर, लेकिन वो शिप पे सेलिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कोई व्यवस्था नहीं थी आने की, लेकिन उन लोगों की इच्छा थी तो पूरा शिप 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए यहाँ पर आ गया है, फिर 4 दिन बाद वापस जाने वाला है। तो देखिए, भगवान को अगर बुलाना हो तो पूरे शिप को भी बुला सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान पूरे शिप को यहाँ बुला लेते हैं, 4 दिन बाद फिर वापस भेजो, कथा सुनो और फिर जाओ। बहाना कुछ भी हो सकता है, रक्षा मंत्री आ रहे हैं या जो भी है, लेकिन बात तो ये थी कि शिव को इसलिए बुलाया कि ताकि सब लोग बैठ के कथा सुने और फिर आराम से जाकर सेलिंग करें। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।